नमस्कार। संयुक्त राष्ट्र समाचार के साथ मैं सचिन गौड़। 17 जून 2022 के साप्ताहिक कार्यक्रम की सुर्खियां। हिंसक टकराव, खाद्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन समेत अन्य वैश्विक संकटों का असर। 10 करोड़ लोग अपना घर छोड़कर जाने के लिए हुए मजबूर। विकास के लिए सीमित संसाधनों का असीमित इस्तेमाल है चिंता की बड़ी वजह। जीवाश्म ईंधन के बजाय नवीकरणीय ऊर्जा पर बल। एक पीढ़ी में अपने सबसे कठिन पल से गुजर रहा है अफगानिस्तान। विश्व भर में करीब 1 अरब लोग मानसिक विकार के किसी न किसी रूप से हैं पीड़ित। और 21 जून को है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। एक विशेष रिपोर्ट में कुछ दिलचस्प जानकारी। आपको याद दिलाते चलें कि वैश्विक परिप्रेक्ष्य वाली खबरों को विस्तार से पढ़ने और खास रिपोर्टों और इंटरव्यूज को सुनने और देखने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर भी आ सकते हैं। पता है news.un.org/hi। अब समाचार विस्तार से। शरणार्थी मामलों के लिए संयुक्त राष्ट्र एजेंसी की एक नई रिपोर्ट के अनुसार विश्व भर में करीब 10 करोड़ लोग अपना घर छोड़कर भागने के लिए मजबूर हुए हैं। यूएन एजेंसी की वार्षिक ग्लोबल ट्रेंड्स रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 के अंत तक युद्ध, हिंसा, उत्पीड़न और मानवाधिकार हनन के कारण विस्थापितों की संख्या 8,93,00,000 थी, मगर इस साल मई महीने में विस्थापितों की संख्या ने 10 करोड़ के आंकड़े को छू लिया। यूएन शरणार्थी एजेंसी के प्रमुख फिलिपो ग्रैंडी ने कहा, पिछले दशक के हर एक साल में विस्थापितों की ये संख्या बढ़ी है।
We are now focused on Ukraine very much, but Ukraine comes after a line of other emergencies. We had Ethiopia at the end of 2020 and through 21. We had the Afghanistan.
फिलिपो ग्रैंडी कह रहे थे कि अभी हम सभी का ध्यान यूक्रेन पर केंद्रित है, मगर यूक्रेन का स्थान अन्य आपात हालात के बाद आता है। 2020 और फिर 2021 में इथियोपिया, फिर अफगानिस्तान और अनेक अन्य देशों में अनसुलझे संकट हैं जो कि विस्थापन के लिए जिम्मेदार हैं। यूएन शरणार्थी एजेंसी ने विस्थापितों को शरण देने में विकासशील देशों की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया है। तुर्की सबसे बड़ी संख्या में शरणार्थियों का मेजबान देश है, जिसकी सीमाओं के भीतर 38,00,000 लोगों ने शरण ली है। इसके बाद कोलंबिया का स्थान है जहां 18,00,000, युगांडा और पाकिस्तान में 15-15,00,000 और जर्मनी में 13,00,000 लोगों ने शरण ली है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेश ने शुक्रवार को ऊर्जा और जलवायु के मुद्दे पर आयोजित एक बैठक को संबोधित करते हुए जीवाश्म ईंधन के इस्तेमाल के खतरों के प्रति आगाह किया है। उन्होंने कहा कि सीमित संसाधनों के पूर्ण इस्तेमाल से असीमित विकास हासिल करने के मौजूदा तौर तरीकों में कई जोखिम निहित हैं। मुद्रास्फीति, जलवायु अव्यवस्था और टकराव जो निरंतर बढ़ते चले जाएंगे। ज्यादा जानकारी के साथ यूएन न्यूज हिंदी के प्रमुख महबूब खान।
यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेश ने संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में शुक्रवार को ऊर्जा व जलवायु पर प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों के एक फोरम को संबोधित करते हुए ये बात कही। इसका आयोजन देश के शीर्ष जलवायु दूत जॉन कैरी ने किया और इसकी मेजबानी राष्ट्रपति जोसेफ बाइडेन ने की। यूएन महासचिव ने प्रतिभागियों को बताया कि प्रगति समाधान स्पष्ट है। जहां तक ऊर्जा जरूरतों का सवाल है तो हमारे पास असीमित संसाधन मौजूद हैं। पवन, सौर और लहरें जो कभी खत्म नहीं होते हैं। अगर हम सीमित व प्रदूषक जीवाश्म ईंधनों के स्थान पर अक्षय ऊर्जा संसाधनों का सफलतापूर्वक प्रयोग करने लगें तो हम ऊर्जा संतुलन बेहतर बना सकते हैं। सट्टेबाजियों में समय बर्बाद करने का दौर खत्म हो गया है। दुनिया ने जीवाश्म ईंधन पर जुआ खेला और हार का सामना किया है। उन्होंने कहा कि जीवाश्म ईंधन उद्योग ने दशकों तक छद्म विज्ञान व जनसंपर्क तरीकों में भारी निवेश किया है, जिसमें जलवायु परिवर्तन में उनकी जिम्मेदारी को कम दिखाने व महत्वाकांक्षी जलवायु नीतियों की महत्ता कम करने के लिए झूठी कहानियां फैलाई गई हैं।
संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त मिशेल बाशिलेट ने अफगानिस्तान में मौजूदा हालात पर क्षोभ व्यक्त करते हुए कहा है कि स्थानीय आबादी एक पीढ़ी में अपने सबसे बुरे पलों से गुजर रही है। यूएन एजेंसी प्रमुख ने मानवाधिकार परिषद को संबोधित करते हुए कहा कि अफगानिस्तान में हम जो कुछ आज देख रहे हैं वो महिलाओं का संस्थागत व्यवस्थागत दमन है। अंशु शर्मा की रिपोर्ट।
मानवाधिकार उच्चायुक्त मिशेल बाशलेट ने कहा कि वर्षों के संघर्ष और पिछले साल अगस्त में तालिबान द्वारा सत्ता हथियाए जाने के बाद से देश एक गहरे आर्थिक, सामाजिक, मानवीय और मानवाधिकार संकट में डूब गया है। उन्होंने तालिबान की दमनकारी नीतियों के कारण गंभीर स्थिति का सामना करने के बावजूद अपने अधिकारों की मांग पर डटे रहने के लिए अफगान महिलाओं के अदम्य साहस की प्रशंसा की। महिलाओं के विरुद्ध सभी प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन पर संधि समेत अन्य अंतर्राष्ट्रीय संधियों की पुष्टि करने के बावजूद तालिबान नेतृत्व अपने अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों का पालन करने से भी बहुत दूर है। इस बीच मानवीय और आर्थिक संकटों का सभी अफगान जिंदगियों पर विनाशकारी प्रभाव जारी है। बढ़ती बेरोजगारी के बीच 93% परिवार उच्च स्तर की खाद्य असुरक्षा का सामना कर रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार लगभग 1,81,00,000 लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं की आवश्यकता है, जिनमें 5 वर्ष से कम आयु के 31,90,000 बच्चे शामिल हैं।
विश्व स्वास्थ्य संगठन का एक नया विश्लेषण दर्शाता है कि दुनिया भर में करीब 1 अरब लोग मानसिक विकार के किसी न किसी रूप से पीड़ित हैं। यूएन स्वास्थ्य एजेंसी के अनुसार मनोविकार के कुल पीड़ितों में से 71% को मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिल पाती हैं। और विवरण के साथ शिवानी काला।
वर्ष 2019 में करीब 1 अरब लोग मानसिक विकार के साथ रह रहे थे, जिनमें कुल किशोर वय आबादी का 14% भी है। मानसिक स्वास्थ्य अवस्था के साथ रह रहे लोगों के साथ भेदभाव, उन्हें कथित रूप से कलंकित किया जाना या उनके मानव अधिकारों का उल्लंघन एक बड़ी चुनौती है। विश्व भर में मनोविकार पीड़ितों में से 71% को मानसिक स्वास्थ्य देखभाल हासिल नहीं है। उच्च आय वाले देशों में मानसिक अवसाद के साथ जीवन गुजारने वाले 1/3 लोगों को ही औपचारिक मानसिक स्वास्थ्य सेवा प्राप्त हो पाती है। निम्न और निम्नतर मध्य आय वाले देशों में उपयुक्त देखभाल पाने वाले पीड़ितों का आंकड़ा लगभग 3% है। रिपोर्ट में अनेक अनुशंसाएं भी साझा की गई हैं, जिनके तहत मानसिक स्वास्थ्य के प्रति रवैयों में बदलाव लाना, देखभाल के लिए प्रणालियों को मजबूती प्रदान करना, सेवाओं में निवेश बढ़ाया जाना और मानसिक स्वास्थ्य के साथ जीवन गुजार रहे लोगों की समाज के सभी आयामों में भागीदारी सुनिश्चित करना है।
संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 11 दिसंबर 2014 को एक प्रस्ताव पारित करके हर वर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाए जाने की घोषणा की थी। स्वस्थ जीवन शैली, शारीरिक, आध्यात्मिक और मानसिक कल्याण में योग की अहम भूमिका है, जिसकी उत्पत्ति भारत में हुई मगर पूरी दुनिया में इसे अपनाया गया है। 8 वर्ष पहले यूएन महासभा में प्रस्ताव लाए जाने के दौरान भारत के तत्कालीन स्थायी प्रतिनिधि अशोक मुखर्जी ने यूएन न्यूज हिंदी के साथ कुछ दिलचस्प बातें साझा की। सुनिए अंशु शर्मा की रिपोर्ट।
27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का प्रस्ताव रखा था। इसके मात्र 75 दिनों बाद 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र के एक प्रस्ताव के जरिए 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन में उच्चायुक्त रहे राजदूत अशोक मुखर्जी।
The idea was not only an idea for governments in the General Assembly who are represented as member states.
ये एक ऐसा विचार था जिसे न केवल सदस्य देशों का समर्थन मिला, बल्कि उसे बाहर से गैर सरकारी नागरिक समाज, युवाओं और महिलाओं से भी भारी समर्थन प्राप्त हुआ। और 11 दिसंबर को जब मुझे यूएन महासभा में इसका मसौदा पेश करना था, तो वो हमारे देश के लिए बहुत गर्व का दिन था, क्योंकि हम इस विचार को इतनी तत्परता से लागू करने में सक्षम हुए। साथ ही हम में से जो लोग एक बहुपक्षीय प्रणाली में काम करते हैं, उनके लिए ये गर्व की बात थी कि इसके जरिए ये स्पष्ट था कि ये प्रणाली उन विचारों को अपनाने के लिए तैयार थी जो समावेशी हों, जो दूरदर्शी हों और मनुष्य व प्रकृति के बीच संबंध बेहतर बनाने में सक्षम हो।
संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन में उच्चायुक्त रहे राजदूत अशोक मुखर्जी के शब्द। स्वास्थ्य व एकजुटता के प्रतीक के रूप में हर साल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर दुनिया भर के सार्वजनिक स्थानों पर लोग मिलकर मस्तिष्क व शरीर के बीच सामंजस्य बैठाकर सेहतमंद रहने के लिए योगासन करते हैं। पूर्व एम्बेसडर अशोक मुखर्जी बताते हैं,
ये हमारी सभ्यता और संस्कृति का हिस्सा है और हमने इसका फायदा उठाया और इसने दिखाया कि हम लगातार वैश्विक कल्याण के लिए काम करते रहे हैं। और जब लोग पूछते हैं कि वैश्विक कल्याण का अर्थ क्या है, तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस एक अच्छा उदाहरण है। हमने संयुक्त राष्ट्र में ऐसी पहल की जो मानवता की मदद कर सकती है और जिसे बाकी मानवता रचनात्मक तरीके से अपनाने के लिए राजी हुई।
21 जून 2017 को योग का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाने के लिए संयुक्त राष्ट्र प्रशासन ने 10 डाक टिकट भी जारी किए, जिनमें विभिन्न योग मुद्राओं और पवित्र ओम प्रतीक को दर्शाया गया है। ये 10 डाक टिकट एक बड़े कागज पर छपे हुए हैं, जिस पर संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय की तस्वीर के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस दर्शाया गया है।
तो आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। सचिन गौड़ को अनुमति दीजिए। नमस्कार।